हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 281 अनय और आदित्य ने काफी देर तक बातें की और कई शिकायतें भी कीं, लेकिन सच तो ये था कि उस वक्त उन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। उन दोनों की ही जिंदगी में एक दोस्त की बहुत कमी थी, इसलिए वे दोनों अपनी दोस्ती को एक और मौका देने की सोच रहे थे, क्योंकि उनके बीच ऐसी कोई गलतफहमी या धोखा नहीं था जिसकी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई हो। वे दोनों अपने अपने हालातों से मजबूर थे। इतने दिनों में वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाए थे और इसी वजह से उनके बीच दूरियां आ गई थीं। बाकी उनके मन में एक दूसरे के लिए कोई खटास नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत शिकायतें थीं, लेकिन बातें करने और गले मिलने के बाद वे आधी रह गई थीं। तभी आदित्य ने बात का विषय बदलते हुए पूछा, वेट, तुम कॉल पर कुछ और बोल रहे थे। तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात बतानी थी, आई एम श्योर। और ये सब तो नहीं होगी जिनके बारे में हम अब तक बात कर रहे हैं। हाँ, ये सारी बातें तो उन दिनों की हैं जब हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। लेकिन आदित्य, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो सच में तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। और तुम जानते ही होगे राठौर इंडस्ट्रीज की मालकिन को, वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ प्लान किया है। मुझे ठीक तरह से तो नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ न कुछ षड्यंत्र उसके दिमाग में चल रहा है, अनय ने एकदम से उसे पूरी बात बताते हुए कहा। आदित्य बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। अनय की बात पूरी होते ही आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, उसका तो पिछले 3 महीने से ही चल रहा है। वैसे उसकी भी कोई गलती नहीं है, मुंबई में उसका इकलौता प्रतिस्पर्धी सिंघानिया होटल इंडस्ट्रीज ही है, इसलिए जो भी यहाँ पैर जमाने की कोशिश करेगा उसका सीधा मुकाबला मुझसे तो होगा ही। लेकिन वो मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। एक मिनट, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तुम उसे कैसे जानते हो? अच्छा, तो तुम्हें पहले ही इस बारे में खबर है, लेकिन तुम सोच रहे होगे कि वो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करके अपना बिजनेस बढ़ाने में लगी है, लेकिन नहीं, वो इससे भी ज्यादा कुछ सोच रही है, बहुत खतरनाक। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस सतर्क रहो और अपना ध्यान रखो आदित्य, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, अनय ने उसकी फिक्र करते हुए कहा। देखो, बिजनेस में लोग ऐसी सस्ती चालें भी अपनाते हैं जिसमें वे पीठ पीछे वार करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और एक दूसरे के बिजनेस सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं इन सबको लेकर आ गया हूँ, लेकिन तुमने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम उस लड़की को कैसे जानते हो। आदित्य ने शक भरी निगाहों से अनय की तरफ देखते हुए फिर से पूछा। बदकिस्मती से वो मनस्वी राठौर मेरी पत्नी है, और सच कहूँ तो मैं इस बारे में किसी से भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन आदित्य, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए, अनय बहुत मायूसी से बोला। उसके उदास होने की वजह जरूर वो लड़की है, ये बात आदित्य को साफ समझ आ रही थी, लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर उसने मनस्वी से शादी क्यों की, और इतनी बड़ी कंपनी की बॉस आखिर अनय से शादी क्यों करेगी? ये सब सोचकर आदित्य के सिर में दर्द होने लगा। उसके सिर का दर्द ना बढ़े इसलिए उसने तुरंत हैरानी से कहा, प्लीज मजाक मत करो अनय, वो मनस्वी राठौर, वो तुम्हारी पत्नी है, सच में। लेकिन तुम्हारा सरनेम तो सिंह है और वो राठौर है, ये कैसे संभव है? उसने अपना सरनेम नहीं बदला है आदित्य, क्यों ऐसे बेवकूफी भरे सवाल कर रहे हो? जैसी वो लड़की है, तुम्हें लगता है वो अपने पति का सरनेम अपने नाम के आगे लगाएगी कभी भी? लेकिन मैंने उसे उसके भाई से बात करते हुए सुना था, और वे जरूर तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे पता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें हमेशा बचाता हूँ, अनय ने उसे पूरी बात समझाते हुए थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। अच्छा, ठीक है, काम डाउन यार, मैं तेरे जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता था, लेकिन तू उसके साथ कैसे फंस गया ये तो बताओ जरा, क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे ऐसी लड़की से शादी करने की? आदित्य ने उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनय काफी शांत हो गया और थोड़ा मायूस भी, लेकिन अपनी शादी के बारे में सोचते हुए अनय ने आज तक कभी अच्छा महसूस नहीं किया था, और उसे पता था कि उसकी शादी किन हालातों में हुई थी, लेकिन आदित्य के पूछने पर उसे लगता था कि उसे आदित्य से इस बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं था। हालात आदित्य, हालात हमें सब करने पर मजबूर कर देते हैं जो हम अपनी जिंदगी में कभी करना नहीं चाहते, करना तो दूर, हम सामान्य स्थिति में कभी उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, जो हालातों के आगे मजबूर होकर हमें करना पड़ जाता है, और फिर भले ही वो हमें सारी उम्र तकलीफ देता रहे और किसी जख्म की तरह चुपता-चुपता नासूर बन जाए, लेकिन फिर भी हम उसका इलाज कराना तो दूर, किसी को अपने जख्म दिखा भी नहीं सकते। ये सब बोलते हुए अनय का दर्द और तकलीफें उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थीं, और आदित्य पता नहीं क्यों उसके दुख और तकलीफों को महसूस कर पा रहा था, और वो पूरी बात जानना चाहता था क्योंकि उसे पता था अगर अनय उसके साथ वो सब कुछ शेयर करेगा तो उसका मन भी हल्का होगा और फिर आदित्य शायद उसकी कोई मदद कर पाए। ये बात सोचते हुए आदित्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, कैसी मजबूरी, और तुम बीच कॉलेज से गए तो फिर वापस भी नहीं आए, कब तुमने उस लड़की से शादी कर ली, और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इस शादी से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। खुशी क्या होती है, मुझे तो लगता है जैसे मैं इस बारे में भूल ही गया हूँ, और सच कहूँ तो मनस्वी से तो मैंने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी हैं। लेकिन अभी, इतना बोलते बोलते अनय कुछ सोच कर रुक गया क्योंकि उसे मनस्वी का हाल ही में कुछ बदला हुआ बर्ताव याद आ गया, और जब से मनस्वी की माँ उन दोनों के साथ रहने के लिए आई है तब से वो काफी अच्छा बर्ताव कर रही है। अरे तो फिर तुम उस लड़की को ही क्यों नहीं छोड़ देते यार, तलाक ले लो उससे, और अगर वो तलाक न दे तो फिर मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद करूँगा, तुम केस फाइल करो, मैं सबसे बेहतरीन वकील को हायर कर लूँगा तुम्हारे लिए यार, सबको खुशी से जीने का हक होता है, ऐसे कैसे वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आदित्य उसे पूरा सहयोग करते हुए बोला, लेकिन तभी अनय ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता, अगर चाहूँ तो भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारी शादी की एक शर्त है, वो चाहे तो मुझे तलाक दे सकती है, मैं नहीं, और मैं इस बात पर राजी भी हुआ था शादी के वक्त। लेकिन क्यों, क्यों तुम इस तरह की बेतुकी शर्त पर शादी करने के लिए राजी हुए, और बताओ मुझे पूरी बात, अगर ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी, आदित्य ने अब उससे जोर देकर पूछते हुए कहा। ऐसे अनय से उसकी जिंदगी और रहस्यों के बारे में पूछते हुए आदित्य पूरी तरह से सुनैना को समझ पा रहा था कि सुनैना को कैसा लगता होगा जब वो आदित्य के साथ रहती है, उसकी पत्नी है और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। बिल्कुल ऐसा ही इस वक्त आदित्य महसूस कर रहा था,
क्योंकि जिस वक्त मैं कॉलेज बीच में ही छोड़कर अपने घर वापस आया था, मैंने तुम्हें बताया था ना, पापा की तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें उस वक्त दिल का दौरा पड़ा था, क्योंकि हमारी कंपनी के उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखे से कंपनी अपने कब्जे में ले ली थी और उनके कागजात पर हस्ताक्षर भी ले लिए थे, जिसकी वजह से पावर ऑफ अटॉर्नी पापा के हाथ से चली गई थी, और अपनी इस गलती का पता चलते ही पापा को बहुत दुख हुआ और वे इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इसी बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा और मेरे बड़े भाई ने भी उनके बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर अपना फायदा देखा और मेरे पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। उस वक्त राठौर इंडस्ट्रीज ने हमारी मदद की और उन्होंने हमारी कंपनी वापस दिलाने का वादा किया, लेकिन इस शर्त पर कि मैं मनस्वी से शादी करूंगा और जब तक वो चाहेगी मैं उसके अधीन काम करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी शर्तें थीं, लेकिन मेरे पास उस वक्त उनकी शर्तें मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप मैंने ये शादी कर ली। इतना एक सांस में बोलते हुए अनय सांस लेने के लिए रुका, लेकिन उसने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य हैरानी से आंखें बड़ी करके मुंह खोलकर उसकी तरफ ही देख रहा था और जैसे उसकी कई बातों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। आदित्य, क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है शादी के बाद से वो मेरे साथ किस तरह पेश। अनय अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आदित्य झट से खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वो जानता था इस वक्त अनय को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है किसी अपने के साथ और सहारे की। कुछ देर बाद उससे दूर होते हुए आदित्य ने सवाल किया, अंकल अब कैसे हैं? वो अब नहीं है आदित्य, मैंने उनके लिए ही ये शादी की थी लेकिन वे नहीं बच पाए, आखिर जिंदा भी रहते तो किस उम्मीद में, उन्होंने मनस्वी और मेरे बीच की बातें सुन ली थी और शायद वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए, अनय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर आदित्य को अब कहीं न कहीं समझ में आ रहा था कि सिर्फ वही एक दुनिया में ऐसा नहीं है जो अकेला और परेशान है, और लोगों की परेशानियां उससे भी ज्यादा होती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आदित्य उन सब चीजों को संभाल नहीं पाता और परेशानियों और दूसरे लोगों को खुद पर हावी होने देता है, जबकि अनय काफी समझदार है और वो इन सब के बावजूद भी आदित्य के बारे में पूरी जानकारी रखता था और उसकी फिक्र भी करता है, इसलिए वो आज उसे अपनी पत्नी से सावधान करने के लिए यहाँ आया हुआ है। क्रमशः